लीजिए उसे एक फोन करें।
जब मुझे मालूम है कि क्या काम है तो मैं क्यों फोन करूं?
आपका बेटा है, उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते?
देखो महमूद, मेरी कोई भी बात नहीं मानता है, यानी उसकी नजर में मैं एक अजनबी की तरह हूं, वो भी अब मेरे लिए एक अजनबी है।
बेचारा महमूद, किस पे भरोसा किए हुए है?
जैसे भी हुआ, ट्यूशन पढ़ाकर, स्पेशल क्लासों में भेजकर मैंने उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। इसके बावजूद इंजीनियर साहब की सबसे बड़ी आरजू ये है कि वो वापस लौटकर दुकान का इंतजाम चलाना चाहते हैं। आधी कीमत वाली चीज़ों को उन दरबदर शुदा इंसानों के हाथों फरोख्त करें। बेगम साहिबा, उसने अपने मुस्तकबिल का प्रोग्राम बना लिया है। मुझे और तुम्हें महज पैसे की मशीन समझता है वो।
ईराना जी, आपकी मदद करे तो अच्छी बात होगी।
मदद क्यों करे? इज्जत तो एहतराम के साथ वापस आ जाए और जो तालीम हासिल की है उसके मुताबिक काम पर जाए।
और जैसे यहां भी बहुत काम है इसके लिए।
यहां पर दीगर मुल्कों से अच्छा माहौल है, वहां अगर आप एक महीने का किराया ना दें तो आपको सामान समेत बाहर निकालकर फेंक देते हैं।
मकसूदी, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर आपने जबरदस्ती उसे लाना चाहा और वो आया भी, तो मैं नहीं आने
कौन
दूंगी।
सी जिद और काहे की जबरदस्ती? मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने सब कुछ डॉलर में तब्दील करके उसको भेजा। उसके बाद आपके बरादर मौजम की दुकान में नौकरी करने लगा। अभी भी एक सादा सा मजदूर हूं। आपके खानदान वाले अपने बड़े कद्र शनास हैं खुदा के फजल से।
मेरे भाई की मौत नागहानी हुई। वो हरगिज हमें साल पे ना छोड़ते। मैं मुर्तजा को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने उनसे बात भी की थी, वो हमारे लिए कुछ करने वाले थे। वो अपनी दुकान का एक हिस्सा मेरे नाम करना चाह रहे थे।
तो अचानक हमारी किस्मत फूट गई और हमारे अलावा कोई इस बात से वाकिफ नहीं। क्या तुम्हारे अलावा तुम्हारे भाई के फैसले से कोई और भी वाकिफ है?
क्या समझ रहे हैं आप? उनको मालूम होता तो हमें बताएंगे क्या?
मलिहा साहिबा, जी हाँ, अगर वो तुम्हारी नंबर एक दुश्मन हो तो हो, लेकिन वो हलाल और हराम का ख्याल रखती हैं।
आप उनको अच्छी तरह नहीं जानते।
तुमने नहीं पहचाना है जो नाराज होकर घर में बैठी हो। अगर तुम्हें अपने लाडले की कुछ फिक्र है तो उठो, गुस्सा खत्म करो, जाओ उन लोगों के पास जाओ, उनसे सुलह सफाई करो, फिर देखो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। मोनी साहिबा,
मैं भाई के कातिल के दरवाजे पे भीख मांगने जाऊं?
तुम घर में बैठकर फैसला कर रही हो, हुक्म जारी कर रही हो, उसे सजा सुनाती हो, फलां को फांसी पर लटकाने की बात करती हो। कौन कातिल, कैसी अदालत, कैसा फंदा?
मकसूदी, अगर मैं भूख और तंगदस्ती से मर भी जाऊं तो उन लोगों के पास नहीं जाऊंगी। आप क्यों चाहते हैं कि दुश्मन मुझ पे हंसे? आप भी तो कुछ कर दिखाओ, कोई हरकत करें। कल हम काशान जाएंगे।
कल रात तुम खाने पे आने वाले थे हमारे यहां, लेकिन नहीं आए।
बहुत थका हुआ था।
तुम अब तक नाराज हो?
जी नहीं।
क्यों बेटा? जिस इस्माइल को मैं जानती हूं, वो अपनी माँ के साथ इतना खामोशी का फासला नहीं रखता। बात करो बेटे, मुझे तुम्हें इस तरह से कम हिम्मत देखने की आदत नहीं है।
पता नहीं, बाज़ औक़ात बाबा की याद बहुत ज्यादा आती है।
सही कहते हो, मैं भी कभी कभी एक एक घंटे मुर्तजा से बातें करने लगती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। सोचती हूँ वो अभी अपने कमरे से बाहर आ जाएंगे।
अम्मी, अगर मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि मुझे आपसे शर्म आती है या मैं आपसे कुर्बत का एहसास नहीं करता, बल्कि मैं कुछ चीज़ें सिर्फ बाबा को बता सकता था। इसको बाप बेटे की बातें आप समझिए।
अगर हो सके तो थोड़ा सा ही बता दो। वादा करती हूँ कि नसीहतें नहीं करने लगूंगी। तुम अभी तराना के बारे में सोच रहे हो? अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए हो? अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए।
यकीन मानिए आसान काम नहीं।
मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ।
लेकिन आखिरकार कोई फैसला तो करना होगा। कल रात उनके वालिद से भी मुलाकात हुई। मोनिस फूफी हैं अम्मी।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
मोनिस जान, मोनिस तुम उसे क्यों भाग रही हो भाई? मेरे टेलीफोन का जवाब क्यों नहीं देती? कहते हैं किसी अजीज की मौत से रिश्तेदारों में कुर्बत बढ़ जाती है, लेकिन मुर्तजा के मरने के बाद तुम मजीद दूर होती जा रही हो। मैंने तुम्हारे हक में क्या बुराई की है?
तुम इसी मजलूम नमाई से मेरे भाई के दिल में घर कर गई थी कि वो खुद को और मुझे भुला बैठे थे।
फूफी जान,
कौन यकीन कर सकता है कि मुर्तजा के वसीयत नामे में मेरा नाम ही ना हो?
ये तो एक साल पहले की वसीयत है। अगर वो दोबारा वसीयत करना चाहते तो तुम्हारा नाम जरूर लिखते। उन्होंने नहीं लिखा है अगर, तो मैं खुद तुम्हारा हक दूंगी।
मुझ पे एहसान जता रही हो? तुम पर हमारे खानदान के बहुत एहसान है, तुम इनका बदला नहीं चुका सकती। मेरे भाई को मुझसे छीन लिया।
मुर्तजा के नसीब में यही लिखा था।
नसीब? अगर मेरा भाई अपनी आरज़ू तक पहुंच जाता तो यहाँ ना होता, मनो खाक तले ना होता।
तुम क्या कहना चाहती हो मोनिस? मोनिस, मैं तुम्हें मुर्तजा की कसम देती हूँ, तुम क्या जानती हो? हाँ,
मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे भाई की जान उसकी आरज़ू की वजह से गई। वो इस कदर इस हाईवे पर आए गए कि वो चीज पेश आ गई जो पेश नहीं आनी चाहिए थी।
तुम उस औरत को पहचानती थी ना? तुम नाहिद करीमी को जानती हो?
मोनिस, सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अम्मी चलें।
तुम जाके गाड़ी में बैठो बेटा, मैं उनके साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। जाओ बेटा।
तुम्हारे भाई ने कसम दे रखी थी कि मुंह बंद रखोगी, नहीं मालूम तुमने किस लिए ये काम किया है, गुलनाज के लिए या फिर इस्माइल से जिद की वजह से।
कशान पहुंचे तो जगा दिएगा।
कहें तो आपके पास रुक जाऊं?
नहीं बेटा, जाओ अपने काम पे जाओ।
आप ठीक है ना?
मेरे सर में दर्द हो रहा है इस्माइल, मैं सोना चाहती हूं।
तो फिर जब फोन करूं तो जवाब दीजिएगा। इस मसले पर हर जाविये से निगाह डाली जा सकती है। आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, बदतरीन और तलख तरीन पहलू इख्तियार ना करें। मैं आपको हक देता हूं, मैं नहीं जानता कि बाबा ने यह बात मुनिस फूफी को क्यों बताई, बताओ उनके पास अपनी कोई दलील होगी। आप ही ने तो बताया है कि कुछ दिनों कबल बाबा बहुत परेशान रहते थे, वो चाहते थे कि आपसे बात करें, है ना?
ये मसला जैसा भी है इसे हमारे दरमियान रहना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं बताया? डर गए थे कि मैं हक को नाहक कर दूंगी या किसी को सदमा पहुंचा सकती हूं। तुम तो खुद गवाह हो, मैं तुम्हारे साथ काशान गई थी ताकि उस औरत का हक दे सकूं। उसका हक महफूज है, जब भी आए उसे दे दूंगी। लेकिन यह कि हर कसो नाकस मेरे पीछे बातें बनाए जिसकी वजह से मैं अपने महल्ले और हमसाय लोगों के सामने सर न उठा सकूं, यह मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं अपनी तन्हाई में मर सकती हूं लेकिन ऐसे मजमे में जा नहीं सकती जो हर लम्हे मेरे बारे में फैसला करें।
कोई भी इससे बाखबर नहीं होगा, मैं किसी को बाखबर नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूं।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
नाहिद कैसी है? उससे मिलने आई हूं।
उसे अकेला ही रहने दें तो मेहरबानी होगी।
जरूरी काम है उसे, माफ कीजिएगा।
सलाम अलैकुम।
नाहिद जान।
वालेकुम सलाम।
सलामुद्दीन साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम चांद।
क्या हुआ मुन्नी साहिबा?
कुछ ही नहीं हुआ, तुम्हारी और तुम्हारे चांद से बच्चे की खैरियत लेने आई हूँ।
ठीक हो?
जी ठीक हूँ, खुदा का शुक्र।
मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि आपने दादी के लिए जो कर्जा लिया था मुर्तजा ने अदा कर दिया है। मुझे तो बाद में मालूम हुआ।
मैं बदकिस्मत, बुरी बात की मैंने। फिर हमारे दरमियान रंजिश हो गई।
रंजिश कैसी? वो तुम्हारे शोहर थे, वो क्यों ऐसा ना करते? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मुर्तजा का साया मेरे सर पे रहे। मैं नहीं चाहती थी वो खुद या कोई और ये समझे कि मैंने उनके माल के लिए शादी की। ये बातें ठीक नहीं है भाई, ये बातें छुपाने वाली नहीं है। तुम दोनों मियाँ बीवी थे, मुर्तजा का भी फर्ज था कि वो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करे। अब तो वो जा चुके हैं तो तुम्हें अपने मुस्तकबिल की बाबत मुतमईन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपको मेरी फिक्र है। शुक्र है कि मैं खुद सेहतमंद हूँ और खुद काम करके अपना खर्चा चला लूँगी। ये तो अच्छी बात है। ना ही चांद, दुकान और करेची घर में तुम्हारा भी एक हिस्सा है। ये तुम्हारे नाम पर है और तुम्हारा बच्चा मुर्तजा का है, इसको मुर्तजा की विरासत मिलेगी। मैंने अपने दिल की बात बता दी। नखरे दिखा रही हो? जी नहीं, कसम से। यानी मेरे भाई के अम्वाल को अजनबी लोगों को दे दूं? तो तुमने मेरे भाई की आरजू पूरी की है। तुम्हारा यह हक है कि दूसरों से बेहतर जिंदगी गुजारो। हाय हाय, काश वो होते और देखते। ये मेरी आरजू थी, मुर्तजा की नहीं। वो तो बच्चा नहीं चाहते थे। नहीं चाहते थे? मजाक कर रही हूँ। मुर्तजा बच्चों को बहुत चाहते थे। जब भी किसी छोटे बच्चे को देखते तो आंखें भर आती, उनके सफेद बालों से बच्चे की हसरत टपकती थी। लेकिन वो अपनी आरज़ू कब्र में ले गए। मुने साहिबा, हसरत नहीं लेके गए, उनको बच्चे पसंद थे लेकिन इस उम्र में नहीं। वो कहते थे वो औलाद चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि लोग समझे कि बाप है ये दादा हैं। मुर्तजा ने मेरे हक में बुजुर्गवारी की और मुझे बच्चा दिया। अब मैं नहीं चाहती कि अपने बच्चे का दस्तरखान मुर्तजा के ताबूत पर बिछाऊं। वो घर जिसकी आप बात कर रही हैं उसकी बुनियाद वीरानी है, वो जिंदगी मलिहा साहिबा की है। मुझे और मेरे बच्चे को उससे कोई फायदा नहीं होगा।
इतना मेरा बच्चा नहीं करो, वैसे तुम्हारा बच्चा नहीं है। मैं भी तो उसकी फुफ्फो हूँ, मैं मुर्तजा के बच्चे को खिलाने की आरजू रखती हूँ।
जी
इतनी खुदगर्ज नहीं बनो।
जी आप उसकी फुफ्फो हैं, इस घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आप जब भी आई मेरे सर आंखों पर।
बहुत शुक्रिया, लेकिन
मुझसे कोई और चीज ना चाहे कि जिसे मैं दे ना सकूं।
किसे अक्कड़ दिखा रही हो? हाँ, क्या सोच रही हो, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तुमसे नहीं कहेगा तुमने ऐसा क्यों किया, तो क्या जवाब दोगी?
उससे कहूंगी अपने पे भरोसा करे, ना दूसरों की जेब पे।
ये बातें सिर्फ किताबों में मिलेंगी। मैं मुर्तजा को खूब जानती थी, वो बहुत खुश थे, तबीयत ठीक थी। तुमने उन्हें ऐसी चीज दी जो मलीहा पूरी जिंदगी नहीं दे सकती थी।
मुने साहिबा, आप मुर्तजा को नहीं जानती थी।
यानी तुम मेरे भाई को मुझसे बेहतर पहचानती हो?
मैं बेहतर जानती हूं क्योंकि उन्हें ज्यादा चाहती थी।
अपनी बात पहले खूब तोल लो फिर बोलो।
मुने साहिबा, मैं वैसी नहीं हूं जैसा आप चाहती हैं। मुझे नहीं मालूम आपके और मलिया साहिबा के दरमियान क्या है, लेकिन आप मुर्तजा साहब को नहीं जानती, क्योंकि अगर जानती तो ये समझ सकती थी कि उनके दिल में मलिया साहिबा कहाँ है। मुर्तजा साहब ने मुझे बहुत इज्जत दी, मेरे लिए यही काफी है।
ठीक है ठीक है, तुम बहुत पछताओगी नाहिद, बहुत पछताओगी। जब अपने बच्चे को गरीबी और नादारी में पालो पोसोगी तब मालूम होगा कौन सही कह रहा था। ये नाहिद अपनी किस्मत फोड़ रही है।
तुम्हें काहे को नाहिद की फिक्र है?
क्या
तुम काहे को इसके लिए अपना खून सुखा रही हो?
आप अपनी चाय पीजिए, चलिए मकसूदी।
माफ कीजिएगा, अब चलता हूं।
खुदा हाफिज। सत्यानाश हो इसका।
तुमने सेफ्टी बेल्ट क्यों नहीं बांधी? तुम जैसा चाह रही थी वैसा नहीं हुआ? हाँ, सारी तदबीरें उल्टी हो गईं। तुम जो इंतकाम लेना चाहती थी उसमें नाकाम हो गई। उस औरत के लिए तुमने जितना खून जलाया, अगर उसका एक हिस्सा अपने घर के लिए जलाती तो कितना अच्छा होता। क्यों कुछ दिनों बाद हमारे बुरे दिन आने वाले हैं? अलबत्ता अल्लाह बहुत बड़ा है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। हमने मिलकर उससे भी ज्यादा सख्त दिन गुजारे हैं। देखो अभी भी हम एक साथ हैं, बिल्कुल अभी की तरह। तुम उन लोगों को छोड़ दो, मैं थाली में छेद नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनसे हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचा है। आपके भाई साहब भी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने भी तुम्हारे हक में बहुत ज्यादा बरादरी नहीं की। अगर तुम उन लोगों से किनारा कश हो सकती हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा।
मुर्तजा को औलाद नहीं चाहिए थी
क्या?
नाहिद ने कहा है कि मुर्तजा औलाद नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि सुमर में मुझे नवासे पोते होने चाहिए, लड़का नहीं।
तो फिर उनके कैसे बच्चा हो गया?
नाहिद ने चाहा था।
मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को मैं उसकी माँ के साथ दस्तकारी सनतों की नुमाइश में देखूंगा उसकी कहानी इतनी लंबी हो जाएगी।
अगर बच्चे के लिए नहीं था तो फिर
शायद आशिक हो गए होंगे, किसी को क्या मालूम।
ठीक है आगे देखिए।
बहुत अच्छा।
अच्छा, वक्त निकाल कर इसका मुतालिया करूंगा और स्टूडियो के लिए मैं तुमसे बात कर लूंगा।
ठीक है, तो मुझे बता देना।
हेलो, सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कैसी हैं? तराना साहिबा, माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, आपको बाद में फ़ोन कर सकता हूँ मैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये लो गर्मा गर्म चाय, ताज़ा। और ये लो, ये भी ताज़ा है।
किस बारे में?
पढ़ लो ना।
خوف و حراس ایسی چیز ہے جو شعوری لاشعوری طور پر انسان کی زندگی میں خلل ڈال دیتا ہے، اس کو بے دست و پا کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا.
کیسا ہے
یہ خوف و حراس کے بارے میں؟
تو پھر شکل ایسے کیوں بنا رہے ہو؟
نہیں جانتے ہو،
کہو کہو، میں تنقید برداشت کر لیتا ہوں.
دیکھو بالکل عام سی باتیں، جو بھی خوف و حراس کے بارے میں لکھنا چاہے گا یہی باتیں لکھے گا.
دیکھو پروگرام شروع ہونے میں ایک گھنٹہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟
میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے. مثال کے طور پر تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟
میں نہیں پتا بھائی، تم خود کس سے ڈرتے ہو؟
بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہوں، سمندر، ڈرائیونگ، اور ان فیصلوں سے ڈرتا ہوں کہ اس میں پھنس جاؤں.
امی ٹھیک تو ہیں؟
مجھے یاد ہے کہ پہلی چادر جو تم نے اسکول میں پہنی تھی اتنی بڑی سی تھی، تمہیں یاد ہے؟
جی بہت پسند تھی.
مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں اپنی بیٹی سے دو منٹ بات کرنے آئی ہوں، بری بات ہے کیا؟
میں نے تو کچھ نہیں کہا. دو منٹ کیوں؟ آپ جب تک چاہیں یہاں بیٹھ سکتی ہیں، بات کر سکتی ہو، میں سنتی رہوں گی. ٹھیک ہے. آپ پریشان ہیں؟
نہیں ہونا چاہیے.
میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیوں پریشان ہوئی؟ آپ کو یاد ہے ان دنوں جب بابا کا کام اچھا نہیں چل رہا تھا، آپ سوچ میں ڈوب جایا کرتی تھیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، تو آپ نے کہا کچھ نہیں، بیماری ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے؟
تمہیں اب بڑے لوگوں کی بیماری لگ گئی ہے کیا؟
نہیں معلوم.
تم کتنی جلدی بڑی ہو گئی.
البتہ میرے خیال میں اتنی جلدی بھی بڑی نہیں ہوئی.
کیا ہوا ہے بیٹی، تم سوچ میں رہتی ہو؟ خدا کی قسم اگر کسی نے تمہیں ایک سیکنڈ کو بھی پریشان کیا تو اس کا جینا حرام کر دوں گی، بتا دیا ہے میں نے.
اوف 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 اوف، ان لوگوں کا کیا ہونے والا ہے.
اور جب سے تم نے اس حاجیہ خانم اور اس کے بیٹے کے ساتھ آنا جانا شروع کیا ہے تم بالکل ہی بدل گئی ہو.
ممی ان سے کیا واسطہ ہے؟
دیکھو انسان اپنی زندگی میں غلطی ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی غلطیوں سے اسے سیکھ لینی چاہیے. وہ لوگ ہم سے بہت الگ ہیں، ان کی دنیا ہماری دنیا سے الگ ہے، یہی سارے اختلافات طلاق کے سبب بنتے ہیں.
ابھی کچھ نہیں ہوا، کیا وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ لینے آئے ہیں.
اچھا تو مسئلہ یہ ہے.
میں نے اسماعیل سے کہہ دیا ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جب محبت اور پسند ہو تو کوئی اثر نہیں پڑتا. لوگ نزلہ زکام کو ہی بیماری سمجھتے ہیں، آپ لیٹے ہوں، چھینک آ جائے اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائیں، لیکن آپ کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں.
چلو اچھا ہے تمہیں خود ہی یہ سب باتیں پتہ ہے.
جی ہاں میں جانتی ہوں، اسی وجہ سے میں کچھ چیزیں بدلنا چاہتی ہوں.
تمہیں حقیقت پسند ہونا پڑے گا، اگر کوئی اور مل گیا جو اس غلط آدمی کی طرح ہو اور تمہیں چھوڑ کر چلے جائے تمہاری بیماری کی وجہ سے، تمہارا کیا ہوگا؟
میں اس کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی. آپ میرے لیے دعا کریں امی.
ہاں بیٹی.
میں وعدہ کرتی ہوں کہ صحت مند ہو جاؤں. ٹھیک ہے.
تو میں تم سے ایک کام چاہتی ہوں، منع مت کرنا.
کہیں
تم اپنے بابا کی کمپنی کی طرف سے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے چلی جاؤ، یہ ٹریننگ جرمنی میں دی جائے گی.
امی آپ تو جانتی ہیں کہ ان کام کا حوصلہ نہیں ہے،
اسی وجہ سے تو میں کہہ رہی ہوں کہ چلی جاؤ، تمہاری طبیعت بحال ہو جائے گی. اس کے بعد اگر تم اپنی بیماری کی وجہ سے کام پر نہیں جانا چاہو گی تو اپنے بابا کی کمپنی میں کام کر سکتی ہو. ٹھیک ہے. اس طرح تم کچھ مہینوں کے لیے حاجیہ خانم اور ان کے بیٹے سے دور ہو جاؤ گی اور یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ کر سکو گی.
हेलो।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अभी तक सो रहे हो?
रात देर तक स्टूडियो में था।
सब रात ही को फोन करते, मुझे सोने ही नहीं दिया।
क्या उन्हें कोई बात मालूम हो गई है? इन लोगों को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैंने शमसियान साहिबा को फोन किया था।
शमसियान साहिबा कौन है?
फरोख कुछ दिनों तक उनकी वर्कशॉप में काम करती थी।
वो मोनिस की दोस्त है।
अच्छा,
खुदा का शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं मालूम हुआ।
उन्हें किस वजह से मालूम होगा मेरी माँ? मोनिस फूफी बाबा की खातिर ही सही किसी को नहीं बताएंगी।
पता नहीं बेटा,
मैं बहुत परेशान हूँ।
परेशानी किस बात की? फिक्र और ख्यालात से अपने आप को निजात
दें। एक डिब्बे में रख के उसे दफन कर दें। वो लोग तो अब हमारे पास नहीं आते ना। इसके अलावा क्या आज आपका क्लास नहीं है?
क्यों नहीं, तैयार तो हो रही हूँ।
तो इतने मनफी ख्यालात अपने जहन में मत लें, अच्छी तरह से क्लास में जाएं।
आप हमेशा क्लास से पहले दो चार दिनों तक मुतालिया करती थी, खत्म हो गया वो सब?
मालूम है बेटा।
इस्माइल, अपनी माँ के लिए दुआ करो। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
सलाम अलैकुम
आजिया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या हो गया है आजिया खानम को? ऐसे क्यों कर रही हैं? बहुत बदल सी गई हैं। जरा देखो तो इनको, बहुत परेशान है। अंदाज ही जैसे बदल गया है, जैसे बैठ ही नहीं पा रही है। देखो ऐसे क्यों हो गई है, बात क्यों नहीं हो रही है उनसे? देखो तो जरा, हो गया है उजिया खानम, पता नहीं शायद उनके शौहर ऐसे क्यों कर रही है। बहुत बदल सी गई है, कुछ अजीब अजीब से देखो तो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अंदाज ही जैसे बदल गया है, कैसे हो गई है, जैसे बैठ ही नहीं पा रही है, जैसे उसे बोला ही नहीं जा रहा।
अपनी सलामती के लिए एक सलवात पढ़ें।
ये नौजायदा बच्चे का बड़े खूबसूरत पलंग है।
जी हाँ,
ये हमारी कंपनी का है। आफ्टर सेल खिदमत भी मिलेंगी और गारंटी भी है। अगर आप मजीद चीज़ें देखना चाहती हैं तो हमारी कंपनी का कैटलॉग है, ये लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। माफ़ करना, आपको अकेला छोड़ दिया था।
नहीं कोई बात नहीं, मोनिस साहिबा ठीक है? कोई बात तो नहीं हुई ना?
ना नहीं, एक काम आ गया था, उसी में उलझा रहा हूँ।
क्या हुआ, काम हो गया?
हाँ, लेकिन खून जिगर पीने के बाद।
हम एक जरा चक्कर लगा लें फिर लौटते हैं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
ये
आप अपने साथ रख सकते हैं। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़।
अरे सारा भी यहाँ है, मैंने तो देखा ही नहीं था। कैसी हो बेटा? ठीक हो बेटा?
हम लोग दादा के साथ पार्क जा रहे हैं।
अली भी आएगा?
जी हाँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ये तस्वीर भी अपने दादा के लिए बना रही हो ना? शाबाश, मरहबा मरहबा। फरूख साहिबा आप सुनाइए।
कल एक ही दो ग्राहक आए थे, ज्यादा लोग नहीं थे, तो मैंने वक्त से फायदा उठाया और गोदाम चली गई। मैं गोदाम में मौजूद चीजों के मुताबिक अपनी फहरिस्त बनाना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती, मैंने कोशिश तो की लेकिन नहीं बना पाई। मकसूदी साहब
एक मिनट तशरीफ लाइए। मोहतरमा, मैंने आपसे कहा था कि आप सिर्फ दुकान देखें, कहा था ना? कहा था या नहीं कहा था?
जी हाँ, लेकिन
तो देखिए इस बहस को अब यहीं पर खत्म करें, समझ गई?
ठीक है।
अम्मी वो गुस्सा हो गए।
नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
जी।
जाओ अपनी तस्वीर मुकम्मल कर लो, जाओ।
जी।
मैडम, अगर मुनासिब कीमत लगाती है तो मैं इसको खरीदना चाहता हूँ।
जी जरूर।
फरमाइए, क्या चाहते
हैं आप? अगर मुनासिब कीमत है तो मैं इसकी खरीदना चाहता
हूँ। तशरीफ ले जाइए, मैं आपको बिल बनाता हूँ। ये लीजिए, डिस्काउंट भी लगा दिया आपके लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
तशरीफ लाइए, मैं आपको आपकी चीज दे देता हूँ।
मोहतरम, आपके लिए हमारे पास अच्छी खबर है।
कैसी खबर? क्या हुआ है?
घर भाई, लोगों का कहना है कि ढूंढने से खुदा भी मिलता है। घर भी मिल गया। कल हम लोग साथ में जाकर देखेंगे, अगर आपने पसंद कर लिया तो परसों आप अपना सामान ले जाकर शिफ्ट हो जाइएगा।
उसकी पगड़ी कितनी है और किराए का?
उसके पैसे के बारे में फिक्र ना करें, किराए भी आपकी आमदनी के हिसाब से है, आप फिक्र ना करें।
खुदा का शुक्र। मैं समझा आप मुझे निकाल रहे हैं।
निकालना? सारा बेटी
जी।
तुम्हारी तस्वीर मुकम्मल हो गई, लाओ जरा देखो। शाबाश शाबाश।
उल्टी पकड़ी है।
ओ अच्छा, सही कहती हो आप, मालूम हो गए कितनी अच्छी है। शाबाश माशाल्लाह। निकालना कैसा मोहतरमा?
मुझे अंदेशा हुआ कि आप नदाफ साहब से गोदाम के बारे में बात कर रहे हैं।
देखें अलीपुर साहिबा, मैं अगर नदाफ साहब से आपके बारे में बातचीत करूं तो अच्छाई के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अरे भाई, हमें इतना अच्छा सेल्स मैनेजर कहां से मिलेगा? शाबाश बेटी, शाबाश, बहुत खूबसूरत है, तुमने अपने दादा के लिए बनाई।
मैं चाहती हूँ कि आधी दुकान जो है मोनिस के नाम कर दूँ।
ये वो आदमी जो मिक्सा था, सी मजाक करता था।
आवारा कहीं के।
चाचा जान, अबू को धूप की कसम, मुझे जेल जाने से बचा लीजिए।
आखिर आप किस चीज के लिए परेशान है?
ना मैं तुम्हें रोकता हूँ ना अली को रोकता हूँ। लेना चाहते हो तो ले जाओ यहाँ से। तुम्हें
आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ।
मुझे पता नहीं उन्होंने ये काम क्यों किया।